हर पड़ाव देते हैं ताकि इंसान हमारे मुबारक रमजान से अच्छी तरह से फायदा ले सके। ये मायूम के रजब अमीर उल-मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ये देखें कि इस्लाम जो सिस्टम और निज़ाम लेके आया था, रसूल अकरम जो सिस्टम और निज़ाम लेके आए थे, उसके बुनियादी बात क्या थी। फिर रसूल अकरम की वफात के बाद 25 साल में इस निज़ाम के क्या गुजरी, और फिर 25 साल के बाद अमीर उल-मोमिनीन ने इसको कैसे वापस लाने की कोशिश। ये इस हवाले से ये एक बेहतर तरीका होगा कि हमें मालूम हो जाएगा कि रसूल अकरम के निज़ाम का क्या बुनियाद था, उसके बाद बीच में 25 साल आए वो क्या थे, और फिर 4 साल और 9 महीने और 3 दिन जो अमीर उल-मोमिनीन की खिलाफत का वक्त है, उसमें इस निज़ाम को वापस लाने के लिए मौला की क्या क्या कोशिशें थी, और फिर उनकी शहादत किस राह में है, उनकी शहादत क्यों है, अमीर उल-मोमिनीन के आखिर लोग दुश्मन क्यों बनते हैं। ये एक छोटा सा मौजू जो एक घंटे के अंदर कोशिश करेंगे तकमील को, लेकिन इस मौजू से पहले एक चीज़ आपकी जरूरत है उमूमी है वो गुजारिश करनी है। आज के इन हालात के मुताबिक जो पाकिस्तान में पाकिस्तान ने सबसे पहले इंकलाब इस्लामी का असर कबूल किया, सबसे पहले अल्लाह के लबनान से भी पहले, इराक से भी पहले, लेकिन फिर हालात ऐसे हुए कि हम सबसे अब पीछे रहे और बाकी जो इलाके हैं शिया वो हमसे आगे बढ़ रहे हैं। इसकी वजह क्या है, उन वजूहात में एक ये है कि हमारे खिलाफ साजिशें होती और हम उन साजिशों के मुकाबले में अपनी मारिफत का इजहार नहीं करते और फिर उन साजिशों का शिकार होते हैं। इन साजिशों में एक साजिश जो उसी अरसे से तकरीबन शुरू हुई थी वो हुसैनियत की साजिश है, यानी आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम को एक मकाम तक ले जाना जो एक खुदाई मकाम अल्फाज से चाहे खुदा करार दें न दें, लफ्ज़ों में चाहे खुदा अल्लाह कहें या न कहें, लेकिन छुपे अंदाज में उसको उसी मकाम तक ले जाएं कि जो खुदा का और अल्लाह का मकाम है। ये उसे रियत है और आइम्मा की ज़बान में इसको इस तरह अकीदा रखने वाला, और आइमा ने उसको काफिर कहा है और नजिस कहा है, और कई मौके पर ऐसे अपराध थे काफिर का भी। हमारी स्टेट ऐसी तरक्की है कि मेला हो खुशी का मौका हो, जब तक नुसेरी का जिक्र ना आए और नुसेरी का खुदा, तब तक हम समझते हैं कि कोई फजाइल नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल जो है उलट है, नुसेरी का खुदा अली इब्न अबी तालिब की कोई फजीलत नहीं है। नुसेरी जो कुछ कहता है वो आप सुने और मौला कुछ कहते हैं वो आप सुने, सबको पता है। नुसेरी को पता है कि अमीर उल-मोमिनीन अपने आप को कहते थे मैं खुदा का बंदा हूँ, नुसेरी कहता है आप खुदा हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उसको पता है कि अमीर उल-मोमिनीन कह रहे हैं मैं खुदा का बंदा हूँ, फिर भी ये कह रहे हैं आप खुदा हैं, इसका मतलब है नऊज़ुबिल्लाह अली इब्न अबी तालिब को झूठा करार देता है कि आप सही नहीं बयान कर रहे, आप झूठ बोल रहे हैं, आप हैं तो खुदा और कह रहे हैं अल्लाह के बंदे हैं, तो आप समझ लें कि नुसैरी जो है खुदा अमीर उल-मोमिनीन को झूठा करार देता है, और जो अमीर उल-मोमिनीन को झूठा करार दे उससे बड़ा बदबख्त इंसान दुनिया में नहीं हो सकता। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के चीज़ों से बचें। आजकल एक चीज़ जैसे बयान हो रही है, जब भी विलादत हो किसी मासूम की سے ولادت نکالتے ہیں اس کی جگہ پہ کبھی آمد، کبھی نزول، کبھی ظہور، اس طرح کے الفاظ جو لاتے ہیں. ہمیں نہ نزول پہ اعتراض ہے، نہ ظہور پہ اعتراض ہے، نہ آمد پہ اعتراض ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ ولادت بھی لازمن لگائیں. ولادت کہیں پھر نزول کہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ولادت کہیں پھر ظہور کہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ولادت کہیں پھر آمد کہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اس لیے کہ جو لفظ ولادت ہے یہ خود آئمہ علیہ السلام نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، اپنے گزشتہ آئمہ کے لیے بار بار آئمہ نے استعمال کیا ہے. اس لیے لفظ ولادت کوئی ایسا نہیں ہے جو اہل بیت کے لیے ان کی منزلت یا فضائل سے دور ہو، یہ خود انہوں نے استعمال کیا ہے، ان کی زبانی ہے. آپ اور میں کم از کم جو ہے اس میں کافی اٹھا کر دیکھیں کہ کتنے مواقع پر آئمہ نے ولادت کا لفظ استعمال کیا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد اللہ علیہ وسلم.
بنایا ہوا امام مانے، معصوم مانے، یہ آپ مقصر سے
न खुदा माने न नबी माने, ये कदमों से हाथ नीचे आ गए। अब ये बीच में है, जितनी फजाइल बयान करें उसकी इजाजत दी गई है। मासूमीन ने बहुत से मासूमीन ने अखबार उनके मौजूद हैं कि हमें रब न बनाओ, हमारा रब करार दो, उसके बाद जितने फजाइल चाहें वो बयान करो। और फिर फरमाते हैं कि फिर भी हमारे फजाइल की आप हद तक नहीं पहुँच सकते। ये दो चीजें भी जो आपकी खिदमत में है, एक मसल बात पर लिखा हूँ। रसूल अकरम आए थे अल्लाह का दीन लाए, उस दीन की क्या बुनियाद थी वो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं। उसके बाद 25 साल में उन बुनियादों को ऐसे बदल दिया गया और अमीर उल मोमिनीन ने उसको वापस लाने के लिए क्या जो दिया। सबसे पहले इस दीन इस्लाम की बुनियाद इल्म, बगैर इल्म के दीन नहीं होता। अब इल्म का ये मतलब नहीं कि लिखना पड़ता, बगैर इल्म के पढ़ने के लिए इल्म हो, लेकिन आजकल हमारे पास ऐसा हो गया है कि बगैर लिखने पढ़ने के इल्म नहीं आता। लेकिन हर दौर में नहीं, ये उस दौर में लिखने पढ़ने के अलावा नहीं, लेकिन ये बुनियाद इसकी इल्म, इस दीन की बुनियाद जहालत नहीं है, इस दीन की बुनियाद इल्म है। चूंकि हमें पता नहीं है कि इस कायनात को किसने पैदा किया है, इसलिए अल्लाह ने पैदा किया, ये जहालत की बुनियाद है नहीं। चूंकि हमें पता है कि इस कायनात को खल्क करने वाला लाजमी है कि बाशऊर हो, इसलिए शऊर वाला खुदा चाहिए, ये इल्म की बुनियाद है। दीन इस्लाम ने सबसे पहले इंसान के हवाले से जो तालीम दी वो ये है कि इल्म लाजमी है। आप देखें कुरान मजीद इब्तदाई सूरत है, मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तबलीगी खुतबा में अक्सर कुरान मजीद पढ़ते थे, उसकी आयात पढ़ते थे, जरूरत होती तो उसकी वजाहत कर देते थे। लेकिन रसूल अकरम जो कि दावत देते थे कुरान मजीद के जरिए, चूंकि रसूल अकरम खिताब करते थे कुरान मजीद को, इसीलिए खिताब की जबान में लाजिम किया गया। कुरान मजीद किताबी जबान में नहीं है, खिताबी जबान में। क्यों खिताबी जबान में? इसलिए कि इसको रसूल अकरम ने खिताब के तौर पर पढ़ना है। कुरान मजीद की पहली सूरत है, पहली सूरत सूरह इकरा, और बिस्मिल्लाह के बाद जो पांच आयात पहले नाज़िल हुई वो शुरू ही ऐसे होती है, इकरा बिस्मि रब्बिक, पढ़ अपने रब के नाम से। यानी क्या मतलब? पढ़ना पहले रब बाद में, यानी क्या? दीन इस्लाम ये कहता है कि पहले इल्म हासिल करो फिर किसी को रब मानो। अगर इल्म नहीं होगा वैसे ही रब रब रब, तो फिर कभी जो है खुद को रब मान लोगे, कभी सूरज को रब मान लोगे, कभी किसी चीज को, कभी किसी चीज को। तो मालूम होना चाहिए, इल्म होना चाहिए कि रब है क्या, और फिर समझो कि ऐसा रब कौन हो सकता है। उस दौर में आज की तरह की किताब नहीं होते थे, पहले दर्जे की किताब, दूसरे की, के जी की, या इस तरह की किताबें नहीं होती थी। मुसलमानों में कुरान मजीद और अहादीस के जरिए ही इल्म दिया जाता था, उसको लिखाते थे, उसको पढ़ाते थे, उसी में जो अक्ल की बातें होती थी, समझ की बातें होती थी, अहकाम होते थे, वही समझाते थे। तो मुसलमानों में जो पढ़ने लिखने का इल्म का जरिया था वो ये कुरान मजीद और अहादीस। मक्के में रसूल अकरम ने दार कुरान बनाया, उसी में तालीम दी जाती थी। जब आप मदीने तशरीफ लाए तो फिर तो एक तहरीक शुरू हो गई है उनकी, जंग बदर में जो 70 काफिर कैद किए गए थे, उनमें से रसूल अकरम ने फरमाया कि अगर इनमें से किसी को लिखना पढ़ना आता है तो हमारे मदीने के 10 आदमियों को लिखना पढ़ना सिखाए, हम उसको आज़ाद कर देंगे। ये इल्म की तहरीक पहली बुनियाद रसूल अकरम के और दीन इस्लाम के इस तहरीक की इल्म। दूसरी बुनियाद का हुआ है, यानी क्या मतलब? सब इंसान बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इससे तो असमत का अगर फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ तकवा की बुनियाद। इन अकरम को में तल्ला है अकाल, ये उस दौर में था जब मालदार को इज्जत होती थी, गरीब غلام بیچارہ اس کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. اس دور میں عزت کا معیار کچھ اور تھا، احترام کا معیار کچھ اور تھا، عظمت کا معیار کچھ اور تھا. رسول اکرم نے آگے سب برابر کر دیا، نہ آقا کو غلام پہ، نہ غلام کو آقا پہ، نہ عرب کو عجب پہ، نہ عجب کو عرب پہ. اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر. یہ تقویٰ لفظ ہے وبا سے ہے، اور وبا کا مطلب بچنا ہے. تو تقویٰ بچنا کس چیز؟ اللہ کی نافرمانی سے. اس کا نام ہے تقویٰ، خدا کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. اب یہ بچنا نافرمانی سے فکر میں بھی ہو سکتا ہے، عمل میں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ایمان اور عمل صالح، اس کا نام ہے تقویٰ. کہ اگر کسی فرد کو عزت و عظمت ہے تو صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد. کسی بڑے آدمی کا چچا ہونا، بھتیجا ہونا، سسر ہونا، یہ ہونا، یہ کوئی معیار نہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اگر اس دور کے کسی فرد کی مذمت کی گئی ہے تو صرف اور صرف ابو لہب. حالانکہ ابو جہل بھی تھا، ابو سفیان بھی تھا، اور بہت ساری اور شخصیات تھیں رسول اکرم کے مقابلے میں. اس کا نام کیوں قرآن مجید میں لیا؟ دوسروں کا نام نہیں لیا، حالانکہ دشمن بہت تھے، لیکن چونکہ یہ رسول اکرم کا چچا تھا اور بڑا چچا تھا، اس لیے قرآن مجید نے اس کا نام لیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ رسول اکرم کے رشتے کی وجہ سے اس کو کوئی عزت و عظمت ملے. کوئی رشتے کی عظمت نہیں، کوئی سردار نہیں، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی آقا نہیں ہے. عزت و عظمت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ. یہ دوسری بنیاد تھی اسی رسول اکرم کے نظام اور سسٹم. تیسری بنیاد یہ تھی کہ جو بیت المال تھا، جس کو ہم قومی خزانہ کہیں، اس کے لیے رسول اکرم کے دو جس کو کہتے ہیں کہ اصول. ایک یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیت المال میں مال آتا تھا تو آپ رکھتے نہیں تھے، اسی وقت مستحقین میں تقسیم کرتے، جس کا حق ہے اس کو دے دیتے تھے. شام تک کوشش کرتے تھے کہ جو مال آیا ہے وہ تقسیم کیا جائے، جمع کیا جائے. اور روایت میں ہے کہ کبھی کبھی رسول اکرم کے پاس اگر تھوڑا سا رہ جاتا تھا شام کو تو وہ رات رسول اکرم سوتے تھے، بیدار رہتے تھے. اور اگلے دن جب تک اسی مستحق اور حقدار کو حق نہیں دیتے تھے تب تک جو ہے سوتے نہیں. یہ رسول اکرم کا